Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
अधिक बढ़ रही है हमारी आज ठंड अधिक है
हवा अच्छा
आज हवा है आज के बाहर जीते हमने बाहर जाना है हवा में भी बाहर जाना है पहले से मालूम चाहिए युद्ध के लिए हम लोग गमन करेंगे पतितानां पावनेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं मे गौरवं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे प्रणमामि हा देवी काकू भरगद गदयाद्दवाच जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादम भूतस्य जनस्य कृत्वा केतव गणे गणनाथ अंग श्यामलिं छटाभिरभितो मंदी कृतेंदी वरम जड्डंजागुडरोचि सांविदतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् भक्त्या विघ्नापराधलक्ष्यै छित्त्वास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाद ध्रुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायन्मानन भिक्षुमन्दं कृपाम्बुधिर्या पर दुःख दुःखे सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सकलं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तस्मै नजमामि त्वयादिना विज्ञानराधितं भजामि राधां मरगुणनित्रम् राधां मधुरस्मिताभ्यां वदामि राधां करुणाभराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नुका राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतभाव्यादाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् कृष्ण गोपियों के प्रेम महिमा की बात बतला रहे हैं, अपना गोपियों के प्रति जो भाव है उस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए यदि कोई अच्छी तरह से भक्ति स्वामी सिंधु के मूल सूत्र श्लोक परिभाषा का श्लोक अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, इस श्लोक को खूब अच्छी तरह से यदि कोई अनुभव किया हो, विशेष करके जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं के माध्यम से उसमें कोई प्रवेश किया हो और सचमुच में थोड़ा सा समझा हो, तो कुछ इस श्लोक के तात्पर्य को समझ सकते हैं। ये अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि श्लोक अर्थ तो वही है, शब्द भी वही है। जैसे एक शब्द है रस ना, रस शब्द है। इसको समझने के लिए टू द एक्सटेंट अत्यंत सीमा तक इसको यदि बढ़ाया जाए तो इसके कितने अर्थ होंगे। रस माने पानी होगा तो नहीं पानी, रस पानी, रस माने कोई चीज का सार अंश जो रस के रूप में है। रस माने जीवन, रस माने प्राण, रस माने प्रेम। प्रेम से भी आगे बढ़ करके जितना ही हम बढ़ते चले जाएंगे स्नेह, रस माने स्नेह भी होगा। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, उसके ऊपर में चला जाएगा मादन मोदन इत्यादि तक ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। वहां तक के लिए ये परिभाषा साधक और सिद्ध और नित्य सिद्ध तक में यह परिभाषा ये है। अंत में वहां तक लग जाएगा राधा जी के अपने भाव, और प्रारंभ में साधन भक्त जो अभी है उन्हीं से भी आरंभ हो सकता है। ये ऐसे ही यहाँ पर अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाष माने जितने प्रकार की अभिलाषाएं हैं हमारे अंदर, यदि कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उनका त्याग, यही ना। कोई भी अभिलाषा लौकिक और परमार्थिक, कोई भी इच्छा यदि कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसका परित्याग। यदि साधक को पहले से ही ऐसा हो जाए तो कोई कारण है कि उसका पतन हो जाए? नहीं होगा। जो कुछ होता है ना, मन खराब किस लिए होता है? इसलिए कि अन्याभिलाष रहता है। साधन अवस्था में गुरु की इच्छा के विपरीत भी उस व्यक्ति में कुछ रहे वैष्णव के विचारों के अतिरिक्त, जैसा करे ऐसा चल, और साधक ऐसा नहीं चलता है किस कारण से? अन्याभिलाष है। गुरु जी के हम पास में हैं, गुरु जी से हमारा कुछ विषय में मतभेद हो गया, क्यों? अन्याभिलाष है, यही कारण है। इसलिए अन्य अभिलाष संपूर्ण रूप से जो दूर कर सकेगा, यहां तक कि अपना पारमार्थिक जो अपनी अभिलाषा है जिसको धर्म कहते हैं, त्यक्त लोक धर्मांश्च, लौकिक जो चीजें हैं तो छोड़ी दिया गोपियों ने, यहां तक कि धर्म की जो अभिलाषा इन लोगों की थी कृष्ण के लिए उसका भी प्रत्याग कर दिया। मैंने प्रतिज्ञा किया मैं सब समय सत्य बोलूंगा, धर्म पथ से कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जरूरत हुई तो जैसे पैखाना होता है ना, जैसे दूर फेंक देते हैं, ऐसे धर्म के चोले को भी फेंक, अधर्म कृष्ण को इच्छा या धर्म के लिए तो वो सधर्म को भी वर्ण कर लेंगे। गोपियां ऐसी हैं, धर्म अधर्म कुछ नहीं जानती, वो क्या जानती है, न धर्मं न धर्मं सुतगुण निरुक्तं किल गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचक जान, बस वही जानती कि धर्म कर्म जो कुछ है वही है कि राधा कृष्ण हमारे कृष्ण क्षण मात्र में पक्का बसते जी। जैसे वो ऐश्वर्य भक्ति के करने वाले, उन्होंने भी इसको छोड़ दिया जब, तो और भक्तों की तो बात ही क्या, हमारी जीत बड़ी चीज है, हमारी अभिलाषा बड़ी चीज है, न कृष्ण की इच्छा। वही कृष्ण कह रहे हैं लोक धर्म वेद धर्म इत्यादि सबको छोड़ दिया, अपना धर्म भी अपनी इच्छाएं सब कुछ छोड़ दी, जो कुछ किया उन लोगों ने किस लिए किया, बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। जगत में दूसरा ऐसा कोई आदर्श ही नहीं है गोपियों को छोड़कर, जो कि तिल मात्र में सब कुछ छोड़ दी। ऐसा यदि हो तो कृष्ण का भजन करो, और नहीं तो गणेश ठाकुर जी हैं, शंकर जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी मूर्ति रख करके और भजन करो आराम के साथ में, और यदि ऐसा करना है तब तो करो। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, इसका भी अंतिम हद तक, जहां तक ये परिभाषा बढ़ करके जा सकती है महाभाव तक ये स्पष्ट कर जाएगी, और इधर में साधन तक की है। अभी रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं, रिहर्सल मैंने क्या, रिहर्सल
नाटक करने पहले स्टेज में जाने के पहले जो
रिहर्सल होता है, कोई भी साइट होता है, कोई गाना कहीं सभा में गाना है तो उसका रिहर्सल होता है, कोई अभिनय करना है तो पहले उसका रिहर्सल कौन कराता है,
जो जानते
हैं वो कराते हैं, तो रिहर्सल गुरु अभी करा रहे हैं जगत में साधन भक्त, वहां क्या प्रेम का, और उन्हीं की बात कोई ना माने तो क्या होगा, तो फिर वहां कृष्ण के प्रीति के लिए हम क्या कर सकेंगे, इसे रिहर्सल नहीं हमने पास हो रहे हैं। इसलिए बहुत ऊंचा ऊंचे कोटि का श्लोक है, हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की है, देखो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त दैहिका, मदर्थे त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान विभन्न, जो कुछ है सब मदर्थे, मदर्थे माने कृष्ण, उद्धव जी को कह रहे हैं कृष्ण हमारे लिए धर्म को भी छोड़ दिया है, अधर्म को भी छोड़ दिया है, धर्म को भी ग्रहण कर लिया है हमारे लिए, धर्म को छोड़ दिया तरह क्या अधर्म उसको भी ग्रहण, किंतु विभर्म में हम, मैं उनके ये सब चीजों को जो छोड़ दिया है मैं वो सब को कर लेता हूं, उनकी मैं पालन पोषण करता हूं। अजय कैसे बतलाएंगे, जैसे गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, उनसे कोई स्नेह की कोई वार्ता नहीं, कभी उन लोगों ने गोपियों का कभी मिलन नहीं हुआ उनके पतियों से, किंतु उनके पति इनका आदर इतना क्यों करते हैं, सम्मान करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे समीप ही में ये हैं, रात में भी इनके समीप हैं, जो चाहते हैं वो सब कुछ उनको मिल रहा है। कैसे मिल रहा, कहते मैंने जोग माया को प्रेरित किया है, वो हमारी उनकी छाया मूर्ति बना करके उनके पास में रख देती है, वो समझते हैं कि हमारी असल वही क्रियाएं हैं, वो उनके लिए रसोई बना रही हैं, उनके पैर दबा रही हैं, पंखे चल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। वो समझ रहे हैं कि वो उनके ऐसा वो प्रेम कर रही है, छाया वाली नकल है ना, इसलिए असल से भी अति करेगी। असल सीता जी जो है ना राम के साथ में रह करके जैसा कर रही, नकल सीता ने और अभिनय अच्छा किया। ऐसे ही वो नकल जो गोपियां हैं जो उनके द्वारा बनाई हुई है कृष्ण की जोग माया के द्वारा, सब कामों का सुंदर रूप से अंजाम दे रही हैं, सब बड़ी बाखूबी के साथ में वो कंप्लीट कर रही। जैसे यदि स्त्री खूब सुलक्षणा हो, सेवा की प्रवृत्ति वाली हो, अपना सब कुछ शरीर पति के लिए सब कुछ कर रखा, तो पति उनके वशीभूत हो जाएगा। वो जोग माया वाली जो नकली स्त्रियां हैं छाया वाली, वो ऐसे कर रही हैं कि उनको अपने वशीभूत बना रहा है, बना रही, किंतु वो नहीं जान रहे कि दो हैं। वो समझते हैं वही छाया वाली ही असल है, और ये असल को भी देख रहे हैं कि ये असल है। तो जब वो देखते हैं ना, इनके प्रति बड़ी साभार रूप से देखते हैं, उनके वशीभूत होकर के उनके आदेशों का भी पालन करते हैं, नहीं आदेश देती है कभी उनके लिए सब कुछ हो करते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं ना भागवत के राजपंच अध्याय के अंतिम अध्याय में कि उनके पतियों ने इनके साथ में असूया नहीं किया, तत्पतिनांच न असूयरन, या क्या शब्द है मुझे याद ठीक नहीं याद, कभी असूया नहीं किया। असूया माने ऐसा देश नहीं किया, क्योंकि सब समय अपने को उनको साथ में देखा, गोपियों को अपने साथ में देखा, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए देखा, उनको चाहिए क्या, बस बस ये कृष्ण कर रहे हैं अपनी योग में ऐसे, सब समय इनका भरण पोषण और इनके सब कुछ की रक्षा जो है ना, भरण पोषण वो सब कर रहे हैं। इसलिए पतियों को विरूप नहीं होने दिया कृष्ण ने, यदि विरूप हो जाते तो मुश्किल हो जाते, इसलिए कृष्ण सब कुछ अपनी योग माया के प्रभाव से कर रहे हैं। उनकी तो किया ही, साधारण साधक भी यदि कृष्ण के लिए सर्वस्व छोड़ देता है सचमुच में, या छोड़ देती है, कृष्ण अपनी योग माया से उनका सब कुछ समाधान कर देते हैं। इस विषय में तिनका भर भी संदेह न रहे, नहीं? अपने ऊपर में घटा करके देखो, अभी तो शरणागति हम लोगों की नहीं हुई, नहीं हुई ना, और तभी वो कर भरण पोषण कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, हम तो गदगद हो जाते हैं, मुझे प्रभु आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना क्या, जो विषयी लोग जो लखपति करोड़पति हैं उनको जो चीजें नहीं हमारे पास में भेज देते हैं, मैं तो डरता हूं कहीं हम चौपट ना हो जाए। इतनी चीजें विषयी लोग कहां ये सब चीजें समझ, अरे एक विषयी अपने अंग की सेवा के लिए कितना नौकर रख सकता है, एक राजा महाराजा भी वो कितना रखेगा, एक दो तीन। और देखो तो हमारे यहां गुरु की सेवा के लिए बिना पैसे के ही अपना हृदय मन प्राण देकर के सेवा करने वाले कितने लोग, लाखों लोग ऐसी प्रभु की कैसा कर देते हैं। यदि कोई थोड़ा सा भी भगवान को दे दे तो अपनी योग माया के प्रभाव से उसके अंदर में प्रेरणा दे करके सब लोगों से उसकी सेवाएं करा देते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं देने देते। और जिन भक्तों को अपना जगत में जो कुछ थोड़ी सी प्रतिष्ठा चाहते थे पहले, तो वो भी दिला देते हैं, कैसे उसके ऊपर में कष्ट दे करके और फिर कष्ट से उबार करके जगत में उसको उजागर कर देते। हरिदास ठाकुर यदि 22 बाजार में नहीं मारे जाते, प्रहलाद महाराज जी पर इतने कष्ट नहीं होते, द्रौपदी का चीर यदि हरण नहीं होता, कौन जानता। इसी तरह से कभी कभी भक्तों पर विपत्ति दे करके और कृष्ण करा लेते हैं, ये कैसे भरण पोषण होता है वो सब जानते हैं। इसलिए गोपियों की तो बात क्या है, कृष्ण हम लोगों को भी आश्वासन ये दे रहे हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्ञमाम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी तरह की शंका और संदेह आप लोग भी मत संदेह संकोच करें, किंतु यदि गलती आपने कर दी ने? आप मालिक बन गए तो फिर नहीं देखेगा, टेढ़ा भी है सीधा भी है, उसके साथ में सीधा रहो तो सीधा रहेगा, और थोड़ा सा टेढ़ा कपटता कर दिया ना, कपट का चूड़ा मनी, सब चीज का चूड़ा मनी है वो, ठगों का ठग, सब विषय में भी मस। इसलिए उसके साथ में सीधा रहना सीखो, उसे छल प्रमत मत करो। यदि उसके साथ में छल प्रपंच कहा किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके सामने विद्वान मत बनो, बलवान मत बनो। मैं हजारों अध्यापकों का मैं पढ़ाने वाला हूं ऐसा मत कहो, नहीं तो वो एकदम नीचे चकना चूर कर देगा। और यदि खूब सीधे साधे रहोगे तुम्हारा सब पूर्ण रूप से रक्षा। वही इसमें कह रहे हैं उद्धव जी को गोपियों की महिमा बतला रहे। वो उद्धव जी कहते हैं, अच्छा इस टीका के साथ में पढ़े यहाँ पर, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थ गोपियां विराहन में जल रही है। विराहन विराह की आग धू धू करके खूब जोरों के साथ में जल रही। अच्छा। यहां पर टीकाकार कह रहे हैं उनके संबंध में कृष्ण पूछ रहे हैं उद्धव जी से, अच्छी क्या करना उचित है, तुम तो बड़े पंडित हो, बड़े बुद्धिमान हो, हमारे मंत्री हो, सब विषयों में तुम्हारी में मंत्र है, गोपियों के संबंध में क्या करूं, वो विरह में जल करके मर रही है, तड़प रही है, उनकी आत्मा भी एक तरह से जल रही है, प्राण भी जल रहा, सब कुछ जल रहा है, कोई ऐसी कोई बात हमको मंत्रणा दो बतलाओ जैसे वो बच सके। उद्धव जी केवल देख रहे हैं टक टक की, कृष्ण के मुख की तरफ कभी देखते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे उनके तरफ में देखते हैं, अभी प्रेम की भाषा तो अभी तो सीखे तो है नहीं, इसलिए कुछ भी उत्तर देने में असमर्थ हैं। और कोई जागतिक लड़ाई युद्ध और पॉलिसी की बात होती तो वो बतला देते, अभी स्कूल में भर्ती होने के लिए इनको ले जा रहे हैं, कौन स्कूल में, जहां पर जिस पाठशाला में ये प्रेम पढ़े हैं ना, प्रेम की शिक्षा उसी पाठशाला में इनको अभी दाखिला कराने के लिए ले जा रहे हैं। बच्चे तो अपने आप नहीं जाते हैं, या तो गोदी में ले जाओ नहीं तो रिक्शा कर लो, नहीं मोटर कार में बैठा करके बच्चों को ले जाओ, इसलिए अपने रथ पर उनको बिठा करके और बच्चे को सजाया जाता है जैसे अपने कपड़े से, उनको जाओ अपनी अपने कपड़े में रहोगे अपने वस्त्र में रहोगे तो वहां पर तुमको शिक्षा नहीं मिलेगी, यदि हमारी गंध वहां पर जाएगी तो वो तो तुमको पढ़ा देगी, अन्यथा तुमको ये अभिमान रहेगा जब मैं हूँ ज्ञानी हूँ और बड़ा भारी बुद्धिमान इत्यादि हूँ तो नहीं हो, इसलिए तुम हमारा सब कुछ ले लो, हमारा गंध इत्यादि सब कुछ, और एक चीज ये है वो तो अभी नहीं दे सकता, वहां से पढ़ करके आओ हृदय तो ये चीज अभी नहीं दूंगा, जब वहां से आओगे तब मैं दूंगा। तो इसी के लिए करें, देखो गोपियां विरह में जल रही तड़प रही, उनकी आधी आधी मैंने विरह, कोई भी समर्थ नहीं है विश्व का, केवल मैं वहां चला जाऊं तो उनका विरह शांत हो जाऊंगा, हो जाए ये भी बात नहीं, ये बात ऐसा समझते हो जब मैं चला जाऊं तो विरह हो शांत, विरह बढ़ेगा कि शांत होगा, इसी डर से तो आए हैं कि मेरे रहते समय में इनका विरह और बढ़ जाता है, बाकी न रहूं तो हमारी चिंता करते 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 तन्मय हो जाने के बाद में कुछ उनको स्फूर्ति मेरी होती है और उस स्फूर्ति में फिर वो हमसे बातें करके बड़ी खुश हो जाती है, खाती पीती हैं और सब काम करती हैं, तो इसलिए मेरा न रहना ही अच्छा है, इसलिए कभी मैं भी जाऊं तो नहीं होगा, किंतु हमारा ये संदेश जो है ये तुम ले जाओ, अपनी बुद्धिमत्ता मत दिखाना, हम लोगों में यही एक गड़बड़ी है, सब जगह हम लोग बुद्धिमत्ता दिखलाते हैं। गुरु जी के यहाँ भी बुद्धिमत्ता दिखलाते हैं, बड़े गंभीर रूप से रहते हैं, ठोस बड़े गंभीर, गंभीर तंभीर मत हो, सरल सीधा एकदम। सरल होइले गोरा शिक्षा बुझिया लइबे, और क्या है उसके ऊपर वाला, गोरा रामी मुखे बोलिले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लइले फल फले, तब उसके बाद
यदि भजबे गोरा सरल करी सरल हाँ। कर्म
यदि भजबे गोरा तो गोरा के जैसा सरल कर्म, सरल चित्त करो, सरल कर्म, तापरे सरल होइले गोरा शिक्षा
पूरी नाटी छाड़ी भज तहार चरण।
तो यदि ये छोड़ दिया अब खूब गंभीर कुप्पा जैसे फुलाएंगे, किसी से बातचीत नहीं करते तब तो हो गया, ऐसा मत करो। गुरु जी के यहाँ फुदकते हुए मृग जैसे होते हैं ना, वैसे गुरु वैष्णव तो कुछ दे देंगे या भगवान दे देंगे। और जहां बुद्धिमान और गंभीर और ये सब बना, समझदार बना, तो समझदारों के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं। इस तरह से रहना चाहिए, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी और सब लोग, रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के निकट कैसे हैं, छोटे से शिशु बन करके, और महाप्रभु जी उनका पीठ था। इस पर कृपा कर दीजिए आप सब नित्यानंद प्रभु, और यदि कहते जी गोप ऐसा करके बुला करके रहते तो नहीं करते, कुछ भी नहीं देते। इसलिए खूब सरल सीधा उनके चीजों को लेने की जैसी भावना। गोपियों का प्रेम, उनकी धुली बहुत ऊंची चीज है, बहुत अच्छी। इसलिए हम लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, बस उसमें चलाकी चतुराई करके उसकी व्याख्या टीका मत करना। यदि तुमने व्याख्या की तो वो तुम्हारी बात हो जाएगी, हमारा संदेश नहीं होगा। बस हमारा संदेश एज इट इज, हम जो कह रहे हैं बस वही कहना, शब्दों में वही, तुम कुछ चतुराई मत करना। इसीलिए कह रहे हैं मन मनस्का कह रहे हैं सनातन गोस्वामी टीका में। हमने कल व्याख्या की थी, अपने मन को उनमें लगा दो, तन्मय हो जाओ, और उसके लिए तादात्म्य मैंने कहा। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तादात्म्य की कोई जरूरत नहीं, लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, मई एव मनो जासाम, मई एव मनः, मैं ही उनका मन हूं, मैं कौन हूं, मैं ही उनका मन हूं। इसलिए आज वो उन्मादिनी हैं, क्योंकि मैं मन तो यहां रह गया और गोपियां वहां हैं। मन के बिना शरीर की कैसी स्थिति होती है, ऐसी उनकी स्थिति है। मैं ही उनका मन हूं, अतएव बाहर में उनका केवल शरीर का ढांचा वहां है और मैं मन यहां पर आ गया। अब मन के बिना शरीर की क्या स्थिति है, आज वही गोपियों की वो स्थिति है। मन नहीं रहे और शरीर में कोई काट दो लगेगा, कोई गाली दे दो तो लगेगा, कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं। ऐसे आज गोपियों की स्थिति है, मन ही नहीं है, मैं ही यहां रह गया, और मैं हूं मत प्राणा, मैं ही उनका प्राण। कल हमने बतलाया था, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ने बतलाया कि मैं ही उनका प्राण हूं, या वो हमारे प्राण हैं, बतलाया था। तो मैं ही उनका एकमात्र प्राण हूं और कोई दूसरा उनका प्राण नहीं है, अपना उनका प्राण भी नहीं है, मैं दूर में हूं, इसलिए वो मृत तुल्य हो गई है। प्राणी नहीं तो शरीर क्या, ऐसे गोपियों के प्राण नहीं है तो वो कैसी है भाई। भक्ति करने के लिए ना, भगवान के लिए इतना नहीं होगा तो अंततः साधन में जितना होना चाहिए उतना तो होना चाहिए। अब हम लोग विचार करके देखें जे हम कितने पानी में खड़े हैं, सोचो विचार कर, हम लोग को कितनी चिंताएं हैं लाखों प्रकार की। अच्छा, गोपियों में कृष्ण इस शब्द के अतिरिक्त, भाव के अतिरिक्त और कोई चिंता है? मैंने खाया नहीं, पैर में विवाह पड़ गए, मैं का कोई भान है वहां? प्राणी ही नहीं, उस मन ही नहीं। हम लोग को क्रमशः इस तरफ में अग्रसर होना चाहिए, इसका नाम है भक्ति, इसके लिए चेष्टा। और किसी चीज के लिए चेष्टा भक्त नहीं करता है। कैसे ये भक्ति इस प्रकार की हो, इसके लिए ही सारी चेष्टा होती है, और कोई चेष्टा उनमें नहीं रह जाती। अभी हम लोगों को बहुत चीज की जरूरत है, अभी हम लोगों को बुद्धिमान बनने की जरूरत है, बहुत सी भाषाओं को जानने की जरूरत है, पांडित्य की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है, शारीरिक बल की जरूरत है, बहुत कुछ की जरूरत। कोई कह दिया तो मन खराब हो गया तो उसको अभी ठीक करने की जरूरत है, कितनी कितनी अभी आवश्यकता। गोपियों को कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस एक है, बस कृष्ण, इसको एकांतिक कहते हैं। अधुना माने इस समय जहां देर आश्रय बोलते आर किसी, गोपियों का कोई अब आश्रय नहीं रहा, कौन आश्रय है केवल? बस कृष्ण ही आधार है उनके लिए। हम लोग का भी आश्रय कौन कौन? अभी कपड़ा है, कपड़ा नहीं पहनेंगे ठंड नहीं लगेगी, तो उनका तो मन ही नहीं, उनको तो ठंड भी नहीं लगेगी। प्राणी नहीं है तो उनको स्पंदन इत्यादि कुछ है ही नहीं, कुछ की जरूरत नहीं। अभी तो हम लोगों को अभी ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, अभी चश्मा निकाल दूं तो मैं पढ़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, सब चीज की अभी जरूरत है। गोपियों को किसी चीज की अब जरूरत नहीं, ऐसे साथ ऊपर में है। जेहेतु अच्छा कृष्ण का कोई भी आश्रय नहीं है, मदर्थे तैत दैहका, दैहका किसको कहते हैं? एक होता है देह,
देह संबंधी,
देह तो है उनका किंतु दैहिक नहीं, और देह में भी देह के लिए जो कुछ होता है, प्राणी नहीं है, मन ही नहीं है, वो सब कृष्ण है। तो इनका देह रहना और नहीं रहना एक बराबर है। दैह का हमारे भजन के लिए पहले ही उन लोगों ने, भजन माने हमारी सेवा के लिए, हमारी मन की अनुरक्ति के लिए, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पहले ही उन्होंने अपना पति पुत्र गृह जो कुछ अपना कहा जाने वाला था सबको संपूर्ण रूप में स्वरूपत और आसक्ति दोनों का त्याग। हम लोग अभी कपड़े पहने हैं ना, आसक्ति तो नहीं है, किंतु स्वरूपत त्याग करके देखो तो जरा सब कपड़े खोल दो और रात में आसक्ति को त्याग सकते हैं, कपड़ों में आसक्ति नहीं है, बुरा से ढक लिया या जैसे ढक, किंतु है ना सूक्ष्म रूप से, उसके बिना हम मर जाएंगे। किंतु वहां पर उनके कृष्ण रक्षक अभी, अभी हम लोगों में कुछ अहं भाव है, मम भाव है, उनमें अहंता ममता कुछ, उसके लिए सारी कुछ चेष्टाएं कृष्ण ही करके विभार में, कृष्ण ही उनका पालन पोषण करते हैं। अतएव तहरा तत्संग विवर्जित, अब उनको अपना कहा जाने वाला पति पुत्र भाई सास सासुरी माता पिता धन संपत्ति गृह कुछ भी अब अपना नहीं। इस रूप से जिनका प्रेम महात्मा और लक्षण निरुपाधि, कोई उपाधि नहीं, उसका कोई लक्षण ही नहीं जगत में है जो उसके द्वारा हम उसको लक्षणान्वित कर सके, कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा हम लक्षित कर सकें। यदि कृष्ण नहीं कहते तो हम लोग गोपियों के संबंध में ये सब बातें नहीं जानते, टीकाकार लोग भी नहीं कह सकते, कोई भी। कृष्ण ने ये कहा है इसलिए हम लोग गोपियों के संबंध में समझ, इतनी ऊंची भावना। मध्वाचार्य जी ने कह दिया कि उनसे श्रेष्ठ स्वर्ग की अश्वराय है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई ने गोपियों को तामसिक राजसिक और सात्विक तीन भागों में विभाग कर दिया, ऐसे कैसे सब ऋषि मुनि की बात कह रहा हूँ, साधारण लोगों की तो बात कर, यदि कृष्ण नहीं आते और ये ऐसी बात नहीं कहते, और हमारे टीकाकार लोग रूप गोस्वामी और सब नहीं आए, उनके संबंध में जानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि निरुपाधिक है ना, जिसका अंतर नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं है, कोई टिकने के लिए आश्रय ही नहीं है, तो उसको किस लक्षण से हम लोग व्यक्त करें, बड़ा भारी मुश्किल। उस प्रेम का ही, वो प्रेम ही निरुपाधिक प्रेम है, उसका केवल बाहरी कुछ लक्षण के द्वारा हम उस प्रेम का निर्देश कर सकते हैं, अन्यथा कोई स्वरूप लक्षण हम न हम जानते हैं, न उपलब्धि है, न हम उसको समझ सकते हैं। अथवा तुम ऐसा समझ सकते हो, विचार कर सकते हो कि आपके लिए जब उन्होंने मन, प्राण, देह, गेह और समस्त चीजों को प्रत्याग करके, निसंग हो करके, विरह के ताप से शांति के लिए वो स्वयं अपने आप आपके पास में क्यों नहीं आ जाती, जब इतना कष्ट है उनको आना चाहिए था ना। जिसको प्यास लगती है वो पानी खोजता है कि नहीं, जहां भी पानी मिले वो पानी, और जो पानी खोजेगा नहीं और कहेगा जी मुझे प्यास लगी है, तो अपना करके मर रहा था, इसका मतलब जैसे उसको पानी की जरूरत है, वो कह रहा है तो गोपियों को आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रही, उद्धव जी मान लो कि ऐसा पूछते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं मदर्थे, मदर्थे माने मेरे लिए नहीं आती, क्यों, हमने कह दिया था आने के समय में, देखो शांति से इतना मेरे लिए विरह दुख अनुभव मत करो, मैं तो जा रहा हूं, कल या परसों तक जरूर आ जाऊंगा, तुम कोई बात की चिंता मत करो, रहो हमारे इस बात से वह रह गए, ये आशा तंतु ही उनके प्राण धारण और वहां रहने का कारण है, नहीं तो वो कभी हमारे रथ के साथ ही साथ में पीछे पीछे भगी आती, हमारे सखा लोग आ गए ये क्यों नहीं आ जाते, किंतु हमने जो मना कर दिया, ये देखो अब ये शिष्य पहले साधन अवस्था में भी इन चीजों को पालन करने की चेष्टा करेगा, जो गुरु के आदेशों को नहीं पालन करेगा तो यहां तो कैसे जाएगा, कृष्ण ने कह दिया ठहरो ठहरो यहीं रहो रहो, मैं आ रहा हूं कल परसों तक आ जाऊंगा, नहीं गई अंत तक नहीं गई, आ जाएंगे आ जाएंगे, अब आ गए वो है ना, अपिवत मधुपुरिया आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरत सफेत पितृगेहान बंधुश्च, कह रहे हैं जैसे वो गोपियां मैंने राधा जी कह रही भ्रमर से, मैंने तुम्हारी कोई तुम्हारा कोई स्वागत मैंने नहीं किया, जली कटी बातें आप तुमको सुनाई, अब तुम आ गए, अब आ गए मधुपुरी से लौट आए, अच्छा बताओ वो आर्यपुत्र ठीक है, अब जरा ठीक रूप में बातचीत कर लो, अपिवत मधुपुर या आर्य पुत्रा धुनास्ते, अधुनास्ते मधुपुरी में हैं, तात्पर्य क्या अधुना कह रही हूं, अधुना मैंने इस गुरुकुल से पढ़ करके आ गए हैं, तो एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, आ रहे हैं क्या, आपको पहले कह दिया जिसे जाओ खबर दे आओ जी मैं आ रहा हूं, अभी वो सोच रही है इस तरह से, हम तो मरी जाती केवल इसी आशा तंतु के लिए हैं कि उन्होंने कहा है तो वो जरूर आएंगे, और हमको दृढ़ विश्वास है बिना ये रह नहीं सकते, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आई क्यों नहीं, इसलिए मदद थे हमारे आश्वासन के कारण नहीं आई, हमने मना किया था उसीलिए कह रहे हैं मदद थे, जिनके निमित्त हमारे निमित्त ही हमारी बातों के लिए ही हमारे पास में नहीं आए, हमारी आज्ञा का प्रतिपालन करने के लिए, तत गोकुल से मथुरा यात्रा करते समय मैंने कल कहा था आयास से मैं शीघ्र ही आई गया, अब ये समझो कि मैं आ गया, तुम लोग व्याकुल मत हो, रो मत, हमें मत रुलाओ। यात्रा के समय रोना अच्छा नहीं। उसने देखा जैसे थे ये यात्रा कर रहे हैं, और इस समय सचमुच में हम रोएंगे तो इनका तो हो जाएगा। ये भीतर में जल रही हैं, मर रही हैं, छटपटा रही हैं, तो अभी ऊपर से थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, ये सहज काम है। मर रही हैं और ऊपर से कृष्ण के लिए आशा कर दिया, आया से बस केवल एक शब्द पर। इस आश्वासन पर आज भी, आज तक भी किसी प्रकार से कष्ट शस्त्र से प्राण को धारण कर रही है, प्राण धारण कर रही है, मैंने कृष्ण को धारण कर। कृष्ण ने कहा कि मैं ही प्राण हूं, यह धारण किसको कर रही है? प्राण मैंने कृष्ण को ही अपने यहां पर धारण करके किसी प्रकार से जीवित हो रही है। अथवा मेरी प्रीति पर्यालोचना करके मदर्थे, मदर्थे मैंने यहां मत अर्थे, देह संबंधी पति पुत्र अलंकार इत्यादि प्राण धारण कर रही है ना, जैसे तो मेरे लिए ही वो अपने पति पुत्र अलंकार इत्यादि का प्रत्याग नहीं कर रही है। कहीं कहीं है जो प्रत्याग किया है, कहीं कहीं पर है नहीं किया। गोपियां बड़ी खुशी से अपने अलंकारों को धारण किए हैं, किस लिए? कृष्ण आ रहे हैं, ये देखें जैसे उनके विरह में मैं तड़पाती हुई, मेरी ऐसी दशा है, तो कृष्ण शायद जीवित न रहे इसलिए उसको धारण कर। मदर्थे, सब जगह मदर्थे। अथवा मत प्रदत्त अलंकार इत्यादि, इसके बिना, इस एतद् द्वारा, इसके द्वारा कृष्ण के बिना देह गेह धर्म अशेष व्यापार ये सब धारण करना न करना, जो कर रही है तो, नहीं कर रही है तो, असल में तो धारण नहीं कर रही है, किंतु कृष्ण ऐसा दिखला रहे हैं। गोपियां बड़ी पतिव्रता हैं, गोपियां दिखला रही हैं, न कृष्ण जोगमाया के प्रभाव से उनकी मूर्ति बना करके उनके पतियों के प्रति वो छाया के द्वारा वो करा करके जगत को दिखला रहे हैं। ये तो निष्ठा के साथ में पतियों की सेवा कर रही है, करा रहे हैं। देखो कैसे लोग धर्म को भी बचा दिया कृष्ण ने, देह देह अशेष व्यापार निरपेक्ष, किसी में भी अपेक्षा नहीं रख रहे, भक्त लोग नहीं रखते किसी चीज की भी, किंतु भगवान उनका अपनी योग माया के प्रभाव से सब कुछ। इसीलिए कहा गया है, कहीं हम लोग बृहद भगवत प्राप्त इसी में पढ़ाता पीछे, कि उनके ये संसारिक कर्मों को करने के लिए 33 करोड़ देवता लोगों को और ब्राह्मणों का रखा है नियुक्त, इनकी कोई त्रुटि है तुम लोग पूरा करो, इनके जितने त्रुटियां और ये सब है सब करो, इनकी कोई त्रुटि ही नहीं है। लोक समाज में भी उनको ऊंचा रखने के लिए कहते हैं, उसे क्या हुआ? सुनो, जो हमारे निमित्त इस प्रकार की दैहिक ऐहिक पारमार्थिक सब प्रकार के सुख सुविधाओं को और उसके लिए संग्रह करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, केवल मात्र भजन करता है ने? हरे कृष्ण बड़ी भावना के साथ में तन्मय होकर के, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, घर बार नहीं है, न किसी से कोई संबंध है, न प्रीति है। हम लोग तो देखेंगे ये कोई धनी आदमी आ गया ना तो ठीक है, थोड़ा सा भाई ए प्रेमानंद इसको जाकर के जरा सब तरह की व्यवस्था कर देना, कोई कष्ट ना हो। अच्छा भाई क्यों कह रहे हो, कह क्यों रहे हो, कारण क्या? अप्रेमानंद भी लग गया किस भी, हम लोग क्यों करते हैं? सिंघानिया जी आए हैं भाई, इनके कोई कष्ट नहीं होने वाले। अरे तू भजन कर रहा है तो तुमको क्या जरूरत? कहिए हम बहुत से बहाना बनाए, भैया ठाकुर जी की बहुत सेवा करता है, ठाकुर जी के कितने अलंकार रूपे पैसे मठ मंदिर में कितनी लाखों प्रकार की सेवा करता है, इसलिए उसको करना है तो फिर आइंदे से नहीं करेगा, बिगड़ जाएगा किसी न किसी रूप में है उसकी अभी अपेक्षा गोपियों को है नहीं। यहां तक कि जब भाव आ जाएगा भाव अवस्था या कृष्ण में नाम में और भजन में आसक्ति भी हो जाएगी तो ये सब चीजें और वो लोग क्या करेंगे अभी जितना करें उसे लाख गुना अधिक करने की चेष्टा करेंगे और उनको परवाह नहीं करेंगे उनके तरफ में देखेगा भी नहीं और वो अपने को कृतार्थ समझेंगे यदि उनसे दो चार बातें कर दिया तो नहीं ऐसी ये बात है किंतु हम लोग अभी समझते नहीं तो कह रहे हैं जिन्होंने देह दैहिक अपनी सारी चेष्टा अभी यहाँ पर कोई ब्रह्मचारी हो ना दिन रात यहाँ पर सेवा कर रहा है रसोई बना रहा है और बर्तन साफ कर रहा है इस ठंडे के समय में हाथ पाए पाले हो जाते हैं ने? कहां हम लोग सब कोई मोजा लगाते हैं कोई कुछ करते हैं और वो सदरे में बेचारा गमछा पहन करके और हाथ पैर ठिठुर रहे हैं ठंड पानी से बर्तन खाली रगड़ रगड़ करके मज रहा है अपने लिए कभी कुछ मांगता नहीं है एक कपड़ा भी नहीं मांगता कभी नहीं कहता जैसे हमारे लिए महाराज जी एक कपड़ा दे कभी नहीं मांगता कभी ये नहीं कहता जी महाराज जी हमारे लिए एक मोजा दे दीजिए कभी ये नहीं कहता जी बुरा भला जो कुछ मिल जाता है खा लेता है वो भी बुलाने पर खाता है कोई कुछ भी नहीं कहता एक पैसा एक साबुन का भी प्रश्न नहीं वहाँ